हेलो लर्नर्स, तो आज हम फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट जो चैप्टर है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मैनेजमेंट क्या है या मैनेजमेंट से हम क्या समझते हैं। जैसे कि अगर हम एक घर में देखें तो एक हाउसवाइफ होती है जो घर का सारा काम जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज करती है। जैसे कि घर को किस तरह से डेकोरेट करना है, खाने में क्या बनाना है, कहाँ से सब्जी आ रही है, कैसे मेड को काम करने के लिए रखा हुआ है, कौन कौन सा काम उससे करवाना है, तो ये सब जो चीज़ें हैं, या फिर बच्चों को तैयार करना है, उनको स्कूल छोड़ना है, उनके कपड़े तैयार करने हैं, सब्जी काटनी है, घर में जो बर्तन है उनको साफ़ करना है, जगह पे रखना है, और इसके अलावा जो घर की और साफ़ सफाई है वो सब भी करनी है। तो हम देखते हैं कि ये सभी काम एक हाउसवाइफ किस अच्छी तरीके से मैनेज करती है, सभी हम अपने अपने घरों में देखते ही हैं। हालांकि इस काम के लिए, इसको मैनेज करने के लिए हो सकता है वो कभी कभी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी घर के दूसरे लोगों को भी सौंप दें। हो सकता है घर पे कुछ अगर बड़े लोग हों तो उन्हें सब्जी काटने को दे दी जाए कि वो बैठे बैठे अपनी जगह पे सब्जी काट दें, या फिर जो बच्चों को स्कूल छोड़ने का काम है मे भी वो उनके फादर को दे दिया जाए कि वो बच्चों को स्कूल छोड़ दें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हाउसवाइफ घर के सभी काम करती हैं और कितनी खूबसूरती से वो इन कामों को मैनेज करती हैं। इसी के अलावा आप लोग मुझे लगता है कभी ना कभी स्कूल ज़रूर गए होंगे, या फिर आपने आपके कुछ दोस्त होंगे जो स्कूल में पढ़ते होंगे, तो आपने उनके टीचर्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो हम देखते हैं कि जब एक स्कूल टीचर एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करती है तो उनको कितनी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। उनको ये ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कितने बच्चों को लेकर जाना है, वहाँ पर कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, कितना कलेक्शन करना है, वहाँ पे अगर बच्चे लंच करेंगे तो उसमें क्या बनवाना है, लंच की ड्यूटीज़ किसको देनी है, और फिर बच्चों की सिक्योरिटी और सेफ्टी का ध्यान भी उन्हें रखना होता है। तो ये सभी काम एक टीचर मैनेज करती हैं, या फिर वो, और ये सब करने के लिए ज़रूरी नहीं कि वो सबका सारा का सारा काम खुद ही करें। हो सकता है वो कुछ ड्यूटीज़ बच्चों को भी असाइन कर दें, जैसे कि खाने में क्या बनना है ये इसके लिए एक लिस्ट बनाने के लिए वो बच्चों को दे दें, या फिर कितना पैसा कलेक्ट करना है इसकी ड्यूटी बच्चों को दे दें कि दो चार बच्चे मिलके सब बच्चों से पैसा कलेक्ट करेंगे, या फिर खर्च करने की जिम्मेदारी एक बच्चे को दे दें। तो इस तरह से वो भी अपने काम को करने के लिए दूसरों की हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा हम सभी अपनी लोकेलिटी में देखते हैं ग्रॉसरी शॉप्स होती हैं, दूसरी शॉप्स होती हैं, तो हम देखते हैं कि जो भी उनके ओनर होते हैं वो पूरी तरह से दुकान को मैनेज करने में लगे रहते हैं कि किस तरह से सामान आ रहा है उसको रिसीव करते हैं, कस्टमर्स को डील करते हैं, सामान को जगह पे लगाते भी हैं, एडवर्टाइजमेंट के जो ऑफर्स होते हैं जो एडवर्टाइजिंग के वो भी वो अपनी शॉप पे डिस्प्ले करते हैं, कौन से गुड्स जो है वो उनकी एक्सपायरी डेट ख़त्म होने वाली है उसको भी जल्दी जल्दी डिस्काउंटेड रेट्स में लगाते हैं ताकि वो पड़े हुए ख़राब ना हो जाएं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शॉपकीपर मैनेज करते हैं, जैसे कि कई बार अगर किसी घर में होम डिलीवरी देनी है तो उसके लिए भी वो मैनेज करते हैं। तो हो सकता है उन्होंने हेल्प के लिए किसी को अपने साथ रखते भी हों, लेकिन पूरा एक ओवरऑल मैनेजमेंट जो है वो शॉप ओनर खुद करता है। तो इसलिए हमने इन तीनों ही केसेस में देखा कि चाहे ये हाउसवाइफ का केस हो, चाहे एक स्कूल टीचर का केस हो, या फिर एक ग्रॉसरी शॉप की हम बात कर रहे हों, सभी लोग इसमें जो इम्पॉर्टेंट एक एक्टिविटी जिसमें इन्वॉल्व हैं वो है मैनेज करने की, या फिर मैनेजमेंट, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो पिकनिक पे हो, या फिर वो एक ग्रॉसरी शॉप पे हो। तो इससे हमें ये पता लगता है कि मैनेजमेंट जो है वो हर जगह इन्वॉल्व है और हर पर्सन को मैनेज्ड होने की ज़रूरत है। हम सभी मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब हम मैनेजमेंट की और बात करते हैं, फिर हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि मैनेजमेंट ज़रूरी है, तो इस पे भी हमको थोड़ी जानकारी लर्नर्स को होनी चाहिए। जैसे कि पहला, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब कि जो भी हमारे पास चीज़ें सामग्री ऑलरेडी उपलब्ध है उसको हमें किस तरह से उसका मैक्सिमम यूज़ करना है कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट जो है उससे ले पाएं। तो चाहे ये ह्यूमन रिसोर्सेज हो या फिर मटेरियल रिसोर्सेज हो, इनको किस तरह से हमको एम्प्लॉय करना है या डिप्लॉय करना है कि हम मैक्सिमम बेनिफिट इससे ले पाएं। फिर जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहे वो कैपिटल हो या फिर लेबर हो, तो इस तरह से हमें ये देखना है कि कैसे हम इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो है एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं और कैसे हम वेस्टेज और चाहे वो टाइम की वेस्टेज हो, चाहे वो मनी की वेस्टेज हो या फिर वो एफर्ट्स की वेस्टेज हो, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं और कैसे हम जो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो लेबर हो, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करके और इसको हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल, कि किस तरह से जो ओनर ने बिजनेस में अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है उसको हम किस तरह से उनको मैक्सिमम उस पर रिटर्न दे सकते हैं जिससे कि उनको वो और ज़्यादा अट्रैक्ट हों और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें जिससे कि ग्रोथ और एक्सपेंशन बिजनेस का भी बढ़ेगा और उनकी इन्वेस्टमेंट का तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें मैनेजमेंट की तो वो है गुडविल क्रिएट करना। तो जो भी मैनेजमेंट का जो एम होता है वो ये भी होता है कि जो भी बिजनेस है उसकी रेप्यूटेशन को अच्छा बनाना। किस तरह से अच्छा बनाएंगे, जो भी उनके पास प्रोडक्ट्स हैं उनको एडवर्टाइज करना, उनको पॉपुलराइज करना, रीजनेबल प्राइस पे गुड्स को बेचना, अच्छी क्वालिटी देना गुड्स की, या फिर जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको डायनामिक बना के रखना ताकि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उससे वो इन्फ्लुएंस होते हुए उसको कंट्रोल में रख सके। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का वो है कि जो एनवायरनमेंट की चैलेंजेस हैं उनको भी फेस करना, जैसे कि मे बी कुछ पॉलिसी चेंज हो जाए जिससे एकदम बिजनेस में फ़र्क हो जाए, जैसे भी हमने देखा कि डीमोनेटाइजेशन आया या फिर GST लागू हुआ, तो इन सब चीज़ों के लिए, इन सब बदलावों के लिए बिजनेस कैसे तैयार होगा। तो मैनेजमेंट का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि इस तरह से तैयारी रखना, बिजनेस को इस तरह से शेप करना, इस तरह से उसको तैयार करना कि कभी भी अगर कोई पॉलिसी चेंज हो या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या कोई एकदम से कोई कॉम्पिटिटर उभर के आ जाए तो वो इससे भी अपने बिजनेस को बचा के और मैनेज करते हुए अच्छे से आगे निकल पाए। उसके बाद नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पर डिस्कशन करेंगे कि मैनेजमेंट की क्या क्या खासियत है, क्या खासियत, क्या खास बातें हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल होता है। जैसे कि हमने देखा कि जब हमने स्कूल टीचर की बात करी तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट की बात हुई, हमने ग्रॉसरी शॉप की बात करी तो वहाँ पर भी मैनेजमेंट की बात हुई, उसके अलावा हमने जब एक हाउसवाइफ की भी बात करी तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट इन्वॉल्व था। तो इसलिए इससे हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है और चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या हॉस्पिटल हो या कोई बड़ी फर्म हो, हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत उतनी ही रहती है और ये एक कॉमन एलिमेंट है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मैनेजमेंट जो है वो गोल डायरेक्टेड होता है। जो हर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो भी काम करता है, वो कुछ गोल्स के साथ में काम करता है कि इन गोल्स को हमें अचीव करना है। जैसे कि किसी बिजनेस फर्म का गोल हो सकता है कि इस ईयर में इतना प्रॉफिट बनाना है, तो मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन का होगा वो इस तरह से होगा कि वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो उनको अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन की मदद करे। उसके अलावा मैनेजमेंट को हम ये भी कहते हैं कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि हमने, ये एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है तब तक मैनेजमेंट भी एग्जिस्ट करता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर ग्रॉसरी शॉप वाला है तो वो दो दिन अपनी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ रहेंगी और बाकी दिन नहीं रहेंगी, या अगर कोई स्कूल टीचर है तो दो दिन वहाँ पे मैनेजमेंट रहेगा स्कूल में और बाकी दिन नहीं रहेगा। तो एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है और हमेशा जो है जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, चाहे वो प्रोडक्शन की हों, चाहे सेल की हों, स्टोरेज की हों या ऑपरेशन की हों, हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके अलावा मैनेजमेंट जो है वो एक इंटीग्रेटिंग प्रोसेस भी होता है। जो भी फंक्शंस होते हैं या जो भी एक्टिविटीज होती हैं और जो भी ऑपरेशंस होते हैं उन सबको इंटरमिक्स्ड करके इसको देखा जाता है। तो मैनेजमेंट का अगर हम टास्क कहें तो ये है कि इन सबको एक साथ लाना और इन सबको मिल के एक दूसरे के साथ काम करना। मतलब कि अगर हम खाली जैसे हम मैन मशीन और मटेरियल की भी बात करते हैं तो अकेले ना मैन कुछ कर सकते हैं ना मटेरियल और ना ही मशीन, लेकिन तीनों एक साथ इंटीग्रेट होके किस तरह से काम करें कि ऑर्गेनाइजेशन को उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट की वो है मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का अर्थ होता है कि जिसको हम छू ना सकें। तो मैनेजमेंट कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम छू सकते हैं या कोई फर्नीचर की तरह नहीं है कि हम उसको टच कर सकते हैं, लेकिन ये एक इनटेंजिबल चीज़ है। जैसे कि जब हम किसी स्कूल में विजिट करते हैं या किसी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद हमें फील हो जाता है कि यहाँ पे मैनेजमेंट कैसा है। अगर हम किसी स्कूल जाते हैं और हम देखते हैं कि सब लोग अपने अपने काम में हैं और शांति है और सब काम भी हो रहे हैं और सब बच्चे और टीचर्स अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो हमें लगता है कि नहीं, इस स्कूल का मैनेजमेंट अच्छा है। इसी के कंट्रास्ट में अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ हम देखते हैं कि अगर किसी वार्ड बॉय की ज़रूरत है और उसको शोर मचा मचा के बुलाया जा रहा है और फिर ये फ्री नहीं है उसको बुला लो, वो फ्री नहीं है उसको बुला लो, अगर इस तरह का माहौल हमें देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं तो हमारे मन में फीलिंग आती है कि यहाँ का मैनेजमेंट जो है वो अच्छा नहीं है। इसी के बाद एक और जो कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट जो है उसको मल्टी डिसप्लिनरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे जो फील्ड्स होते हैं उनसे लिया जाता है। जैसे मैनेजमेंट का कुछ पार्ट इंजीनियरिंग, कुछ इकोनॉमिक्स, कुछ सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स से लिया जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम मैनेजमेंट को मल्टी डिसप्लिनरी भी मानते हैं। इसी के बाद हम ये भी कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो सिचुएशनल भी होता है। मतलब कि कोई एक तरीका नहीं है जिससे हम चीज़ को मैनेज कर सकें। ऐसा नहीं है कि हमने एक कोई किताब पढ़ ली और हमने मैनेजमेंट सीख लिया, वो हमेशा सिचुएशनल होगा। आज की सिचुएशन कुछ और है, उसको उस तरीके से मैनेज किया जाएगा। कल की सिचुएशन कुछ और होगी और उसको उस तरह से मैनेज किया जाएगा। जैसे कि हम क्लास में भी देखें तो टीचर के लिए भी, टीचर को भी एक अच्छा मैनेजर भी कहा जाता है, क्योंकि अगर वो क्लास की सिचुएशन को हैंडल कर पा रही हैं कि आज अगर बच्चों ने कुछ कर दिया तो उनको क्या एक्शन लेना है, वो एक्शन अलग होगा, लेकिन अगले दिन उसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगले दिन कोई नई सिचुएशन होगी और उनको कोई नया तरीका ईजाद करना होगा उस जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए। इसलिए मैनेजमेंट के लिए हम ये भी कहते हैं कि मैनेजमेंट सिचुएशनल होती है। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पे डिस्कशन किया, हमने ये जाना कि मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल होती है, गोल डायरेक्टेड होती है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक इंटीग्रेटिंग प्रोसेस है, इनटेंजिबल है, मल्टी डिसप्लिनरी है और सिचुएशनल भी है। इसी के बाद हम ये भी जानेंगे कि मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंस क्या है। ये तो मैनेजमेंट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी या फिर हम कह सकते हैं कि फीचर्स थे। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या खासियत है मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक लेवल पे, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो ऑपरेशनल लेवल हो, हर एक डिपार्टमेंट का, हर जगह जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उसी हिसाब से मैनेजमेंट के गोल्स भी डिफाइन किए जाते हैं कि किस क्या हर डिपार्टमेंट को करना है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। इसलिए गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसमें ज़रूरत पड़ती है प्लानिंग की। प्रॉपर तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और कंट्रोल होना चाहिए, जिससे कि जो ग्रुप एफर्ट्स हैं उनको कंट्रोल में रखा जा सके। उसके बाद जो नेक्स्ट अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें मैनेजमेंट की, तो वो स्टेबिलिटी और ग्रोथ होता है, कि किस तरह से हम सारे फंक्शंस को और एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करते हुए एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, ऑर्गेनाइजेशन की जो हेल्थ है, जो जैसा कि हमने पहले भी बिजनेस एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे थे कि कोई पॉलिसी चेंज होता है या एकदम से कोई कॉम्पिटिटर निकल के आ जाता है, तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसमें कैसे हम खुद को इस्टेब्लिश करके रह सकते हैं, कैसे हम स्टेबल होकर अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, ये भी एक मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है चेंज और डेवलपमेंट। तो किस तरह से मैनेजमेंट जो है वो अपने आप को इस तरह से अपने बिजनेस को बना के रखता है कि चाहे चेंज हो या फिर कुछ भी डेवलपमेंट हो, बिजनेस जो है अपनी पोजीशन को सिक्योर रख पाता है। उसके बाद एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है। तो जिस तरह से प्रॉपर प्लानिंग के द्वारा स्टाफिंग हो, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो एम्प्लॉयज़ के बीच में, डायरेक्शन अच्छे मिलें और सब कंट्रोल के अंदर मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है कि एफिशिएंटली वो जो है अपने गोल्स जो हैं उनको अचीव कर पाए। इसके बाद ही अब हम डिस्कशन करेंगे कि मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है। जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसका नेचर डिस्कस करते हैं कि क्या वो साइंस है या वो एक आर्ट है। तो जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस की तरह होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जो इंटर रिलेटेड होती हैं। जैसे जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें आता है प्लानिंग, जो उसके फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के। तो पहले हम किसी चीज़ को प्लान करेंगे, फिर हम उस प्लानिंग के हिसाब से अपनी रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर हम स्टाफिंग करेंगे उसको अचीव, जो हमने ऑर्गेनाइज किया है उसको अचीव करने के लिए हम स्टाफिंग करेंगे, फिर हम कोऑर्डिनेट करेंगे और फिर हम कंट्रोल करेंगे। तो इस तरह से जो मैनेजमेंट है वो एक प्रोसेस की तरह होता है जिसमें इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं होती हैं। उसके बाद मैनेजमेंट जो है उसको एज अ डिसिप्लिन भी देखा जाता है, क्योंकि एक स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ स्टडी है जिसमें जो है जो प्रैक्टिसेस होती हैं मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस उनको फॉलो किया जाता है, तो इसलिए इसको एज अ डिसिप्लिन भी देखा जाता है। और आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो मैनेजमेंट को अब एज अ डिसिप्लिन भी देखा जाता है। फिर मैनेजमेंट को जो है एज अ ग्रुप भी देखा जाता है कि किस तरह ग्रुप में हम मैनेजमेंट को कंट्रोल में करके और उस तरह से हम उसको मैनेज करके रख सकते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट एज अ साइंस या फिर आर्ट, तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी अगर साइंस होती है तो उसको हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट कैसे करते हैं? मे बी हम उसका सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन करते हैं या उसका कुछ एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करते हैं या फिर उन चीज़ों का हम क्रिटिकल इवेल्यूएशन करके हम बताते हैं कि क्या ये साइंस है। साइंस की जब हम बात करते हैं तो जो चीज़ वाई को डिस्क्राइब करती है उसको हम साइंस कहते हैं, और इसी के कंट्रास्ट में जो चीज़ हाउ को डिफाइन करती है कि मतलब ये चीज़ कैसे होगी या क्यों क्यों होगी, जब हम इसकी बात करते हैं तो वहाँ पे साइंस इन्वॉल्व होती है, लेकिन जब हम हाउ कैसे होगी की बात इन्वॉल्व होती है तब वहाँ पे आर्ट होती है। अब क्योंकि ये साइंस के तो सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इन्वॉल्वमेंट होता है ह्यूमन बीइंग्स के साथ में, तो जब भी ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो हर टाइम अलग होगा, ऐसा नहीं कि हमने एक रूल या एक कुछ प्रिंसिपल बना दिया तो सब ह्यूमन बीइंग्स उसको वैसे का वैसे ही फॉलो करेंगे। इसलिए जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो हर टाइम अलग होता है, इसलिए हम कभी भी ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए उसका एक डेफिनेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है। इसलिए जब ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व हैं इसलिए उसको मैनेज करने का तरीका हमेशा हर बार अलग होगा, इसलिए हम मैनेजमेंट को एज अ आर्ट भी कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है या मैनेजमेंट आर्ट है, तो हम कहते हैं कि मैनेजमेंट बोथ है, दोनों ही चीज़ें हैं, कुछ पार्ट उसका साइंस है और वो आर्ट भी है। उसके बाद मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की जब हम बात करते हैं तो प्रोफेशन क्या है, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है। प्रोफेशन का तस्य तात्पर्य होता है वो ऑक्यूपेशन जो कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, जैसे कि किसी चीज़ में कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि इंजीनियर्स को होती है या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को होती है, या फिर उसको पूरा करने का एक फॉर्मल तरीका होता है. जैसे कि जो इंजीनियरिंग करते हैं वो प्रॉपर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनते हैं वो सीए करते हैं. तो इसी तरह उसको करने का एक फॉर्मल तरीका होता है कि कैसे उनको डिग्री को एक्वायर करना है. उसके अलावा एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है उन प्रोफेशनल्स के लिए, एक बॉडी होती है जो कोड ऑफ कंडक्ट देती है कि कैसे इन लोगों को के लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा. जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन करता है कि किस तरह से इन पे क्या चीज़ें लागू होंगी. उसके अलावा जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो है इनकी वो इसलिए होती है कि ताकि ये सोसाइटी के जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं उनको पूरा कर पाएं, बजाय कि ये प्रॉफिट को अर्न करें. इसलिए प्रॉफिट अर्न करना इनका एक एकमात्र मोटिव नहीं होता है. प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ ये भी होता है कि किस तरह से ये सोसाइटी को स्पेशलाइज्ड नॉलेज देते हैं. तो ये हमने चर्चा करी कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस किस तरह से है, मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन क्या है, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप या मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन या फिर मैनेजमेंट एज अ साइंस या आर्ट क्या है. तो लर्नर्स हमने डिस्कशन किया कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. इसके बाद में अब हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं. तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो मैनेजमेंट के मुख्यतः हमको तीन लेवल्स देखने को मिलते हैं. टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है और एक लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है. तो जब हम टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो तात्पर्य है जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या फिर जिस तरह से डेजिग्नेशंस होती हैं कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं या चेयरमैन हैं, इस तरह की पोस्ट जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का कही जाती है. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होती है उनका काम ये होता है कि जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनको बताएं कि क्या हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स और उनके हिसाब से पॉलिसीज़ बनाएं और कैसे हम इन पॉलिसीज़ को अचीव कर सकते हैं उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाएं. तो जो अगर हम ओवरऑल कंट्रोल की बात करें ऑर्गेनाइजेशन का तो वो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होती है उसके हाथ में होता है. उसके बाद में जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है, जैसे कि सबसे ऊपर जो है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट के अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. तो जो भी डिपार्टमेंटल हेड्स होंगे या डिपार्टमेंटल मैनेजर्स या डायरेक्टर्स होंगे वो जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं. और इनका काम ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनके हिसाब से अपने डिपार्टमेंट के गोल्स को ढूंढना कि हमारे डिपार्टमेंट के क्या गोल्स हैं, हमारे डिपार्टमेंट को क्या काम करना है कि हम बिजनेस के गोल्स को अचीव कर पाएं. उसके बाद में लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है. लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम होता है कि जो भी ऑपरेशंस हैं उनको जो वर्कर्स कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करना, जैसे कि सुपरवाइजर्स होते हैं या फोरमैन होते हैं, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं. तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है जो पूरे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनसे उनको ढूंढना होता है कि किस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन के अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को उन हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं. फिर जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं उसमें डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके हेड्स होते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट हो, चाहे सेल का डिपार्टमेंट हो या फिर कोई और डिपार्टमेंटल मैनेजर्स भी हो सकते हैं. तो ये जो थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं जब ये मिलकर काम करते हैं तो इनसे एक हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट बनती है. टॉप लेवल मैनेजमेंट जो कि फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे आती है और जो कि फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट पे आती है. तो अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जान लेने के बाद हमारे लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं. सबसे पहला अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की होता है प्लानिंग. अगर हम कोई भी चीज़ मैनेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम प्लान करते हैं. और एक कोटेशन भी है कही गई है कि जो भी काम हम अच्छी तरह से प्लान करके चलते हैं पहले ही वो काम आधे से ज़्यादा पूरा मान लिया जाता है. तो अगर हम प्लानिंग की बात करें तो पहले से ये डिसाइड करना कि हमें क्या करना है, हमें कब करना है और हमें इसे कैसे करना है। तो अगर हम प्लानिंग की बात करें तो एक तरह से फोरकास्टिंग होता है, टारगेट्स को हम इस्टेब्लिश करते हैं कि हमें हमारे क्या टारगेट्स होंगे, इनको हम कैसे अचीव करेंगे, और उसके हिसाब से पॉलिसीज को डेवलप करना और अपने जो एक्शंस हैं उनको उस हिसाब से शेड्यूल करना कि इसके लिए हमारे क्या एक्शंस होंगे और क्या प्रोसीजर रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो होता है ऑर्गेनाइजिंग, कि अब हमारा प्लान तो बन गया लेकिन अब मैनेजमेंट को उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करनी है, उसके लिए जिन फिजिकल रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत है उस काम को करने के लिए, उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए, वो हमारे पास होनी चाहिए। इसका जो प्राइम इंडिकेशन है वो ये है कि जो भी टास्क हैं हम उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ और फिर उसको हम जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं या जो डिफरेंट यूनिट्स या हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनमें हम इनको बता पाएँ कि किस तरह से जो चीज़ें हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या ड्यूटीज़ हैं वो लोगों में किस डिफरेंट लेवल के जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसमें किस हिसाब से इनको बांटा जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आता है वो है स्टाफिंग। स्टाफिंग से तात्पर्य है कि किस तरह से हम लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं, जो भी डिफरेंट तरीकों की एक्टिविटीज़ जो है करनी है उनको हम किस तरह से उनको हम एम्प्लॉय कर सकते हैं ताकि वो उन एक्टिविटीज़ को कर पाएँ। जैसे कि अगर किसी पर्सनल का रिक्रूटमेंट करना है, उनकी ट्रेनिंग होनी है या डेवलपमेंट होना है, या फिर उनका कहीं पे प्लेसमेंट होना है, उनको रेम्यूनरेशन मिलनी है, या फिर उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल होना है एम्प्लॉयज़ का, तो ये सब काम जो है ये स्टाफिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का वो होता है डायरेक्टिंग। अब प्लान बन गया, हमने रिसोर्सेस जो है उनको भी ऑर्गेनाइज कर लिया, उसके लिए जो स्टाफ था वो भी हमने एम्प्लॉय कर लिया, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग में होता क्या है कि सबॉर्डिनेट्स को गाइडेंस देना कि उन्हें क्या करना है, जो भी काम है उनको छोटे चंक्स में देना, क्योंकि आप उनको इस तरह से नहीं कह सकते कि ये काम पूरे साल में होना है, आपको बताना पड़ता है कि इस महीने में हम ये काम करेंगे या फर्स्ट 15 डेज में हमको इतना काम करना है। तो इस तरह से काम को बांट के उनको देना, उनको अच्छी तरह से काम कम्युनिकेट करना, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप जब हो जाता है तभी भी बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर ठीक तरह से इंटरप्रेट नहीं हुआ वर्कर्स को कि उनको क्या करना है तो कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगी। इसके लिए मैनेजर को एक अच्छा लीडर होना चाहिए, उनका एक अच्छा कमांड होना चाहिए कि जो भी वो बात कहें वर्कर्स जो है उसको अच्छी तरह से माने और उसको करें। इसके अलावा जो नेक्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का वो है कंट्रोलिंग। तो जब हम कंट्रोल करने की बात करते हैं तो जब हमने पहले प्लानिंग किया, उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग के बाद अब जब कंट्रोलिंग आता है तो हम किस तरह से कंट्रोल करते हैं, जो भी चीज़ वर्कर्स, अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर वर्कर्स उसको बना रहे हैं तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं, किस तरह से हम अपने स्टैंडर्ड्स को रखेंगे और किस तरह से जो हम अपनी हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनको स्टैंडर्ड्स के साथ में कंपेयर करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि अगर हमने अगर स्टैंडर्ड अचीव नहीं किया है तो हमें कितनी मेहनत और करने की ज़रूरत है। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन जो है वो भी मैनेजमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना गया है, और ये माना गया है कि अगर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क नहीं कर सकता। कोऑर्डिनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो सब मिल के काम कर रहे हैं, अगर एक डिपार्टमेंट अपनी बातें दूसरे को नहीं बताएगा या उनके साथ शेयर नहीं करेगा या अगर उनमें सिनर्जी नहीं होगी तो अच्छी तरीके से हम फंक्शन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन जो है वो नहीं कर सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई काम है तो वो सब एम्प्लॉयज़ को पता हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ही काम है वो दो एम्प्लॉयज़ ने कर लिया, तीन एम्प्लॉयज़ ने कर लिया, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, उनको भी बोला गया कर लो और उनको भी बोला गया कर लो। तो अगर यही कोऑर्डिनेशन होता उनके बीच में तो उन्हें पता होता कि ये पर्सन ये काम कर रहा है तो मैं उस काम को अब ना करूं। तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज इससे होता है, वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स होता है, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे से अपनी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हुए चलें। और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत भी जो है हर लेवल पे होती है मैनेजमेंट के, चाहे वो लोअर लेवल पे हो चाहे वो हायर लेवल पे हो, कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और कोऑर्डिनेशन भी एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है, जैसे कि परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस और मार्केटिंग जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कि उनको भी पता चले कि ऑलरेडी कितना स्टॉक है, कितना और आना है, कितना परचेज करना है, कितना बनना है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ये सब दिक्कतें भी आने की संभावना रहती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, जो हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ जो मैनेजमेंट हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो दो प्रकार के हैं, जिनके बारे में हमें जानना है। सबसे पहले तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट होते हैं, जो कि F.W. टेलर ने दिए थे, और 6 प्रिंसिपल्स दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, और F.W. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो ये जो प्रिंसिपल्स थे ये ट्रायल एंड एरर मेथड पे बेस्ड थे। तो ये 6 प्रिंसिपल्स क्या थे, इनके बारे में हमारे लर्नर्स को ज़रूर पता होना चाहिए। सबसे पहले तो डेवलपमेंट ऑफ साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ मैंस वर्क, मतलब कि जो भी हमारे डिसीजंस हैं वो फैक्ट्स पे बेस्ड होने चाहिए और वो कोई रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा ही होता है और ऐसा ही करना है। जो भी अगर किसी वर्कर ने कुछ किया है तो उसके काम को एनालाइज करने की ज़रूरत है कि उसका जो काम है, अगर उसने उसकी प्रोडक्टिविटी भी अगर कम है तो क्यों कम है, उस चीज़ को एनालाइज करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है उनका साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए और डेवलपमेंट होना चाहिए। तो वर्कमैन का जो अपॉइंटमेंट भी होता है वो साइंटिफिकली होना चाहिए, जॉब एनालिसिस के बेसिस पे होना चाहिए कि किस ये जो जॉब है इसका जॉब रोल क्या है और इसके लिए हमें किस तरह के वर्कर्स की या किस तरह के पर्सन की ज़रूरत है, उसमें कौन से स्किल्स और एक्सपीरियंस होने हैं। उसके अलावा जो थर्ड प्रिंसिपल है वो कहता है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में क्लोज कोऑपरेशन होना चाहिए। अगर कोऑपरेशन नहीं होगा तो काम करने में काफ़ी दिक्कत आती है। जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो वर्कर्स हों चाहे मैनेजर्स हों, उनका मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए। मतलब जो उनका उनका जो आउटलुक है, चाहे वो वर्क के रिलेशन में हो या फिर उनके एफर्ट्स के रिलेशन में हो, उसका कंप्लीट मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। तो जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो ये भी कहता है कि जो एम है मैनेजमेंट का वो ये होना चाहिए कि किस तरह से वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी सिक्योर कर सकते हैं। फिर जो लास्ट प्रिंसिपल है, सिक्स प्रिंसिपल है, जिसको कि हम डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, वो ये कहता है कि क्लियर रोल्स जो हैं वो डिफाइन होने चाहिए कि कौन से वर्कर को कौन सा काम करना है, प्लानिंग होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड होनी चाहिए और वर्क एग्जीक्यूशन जो है वो भी वर्कर से अच्छी तरीके से किया जाना चाहिए।